أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين، يضع المستكبرين ويرفع المستضعفين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. درود محمد وآل محمد. اذن محترم، سورہ انفال میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے: ایمان لانے والو، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہو، جو تمہاری نجات اور تمہیں حیات دینے کا سبب بنے. اللہ ہمیں حیات کی طرف دعوت دے رہا ہے، ایسی حیات جو ہمیشہ رہنے والی ہے. محمد آل محمد بھی ہمیں حیات دینے والے ہیں، ہمیں زندگی عطا کرنے والے ہیں. اور اصل زندگی وہ ہے کہ جس میں انسان کی روح زندہ ہو. اصل زندگی وہ ہے کہ جس میں اللہ موجود ہو. اصل زندگی وہ ہے کہ جس میں محمد اور آل محمد کی تعلیمات پر عمل پیرا کیا جائے. وہ زندگی جس میں خدا نہ ہو، وہ زندگی کہ جس میں محمد آل محمد کی محبت نہ ہو، وہ زندگی کہ جس میں ان کی تعلیمات پر عمل پیرا نہ کیا جائے. انسان بظاہر زندہ بھی ہو تب بھی وہ مردہ کہلاتا ہے، لیکن جس دل میں آل محمد کی محبت آ جائے وہ مر کے بھی زندہ ہو جاتا ہے. اس لیے کہ فرمایا: من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. شہید کون ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ شہید مرتا نہیں. ولا تحسبن الذین قتلوا، جو شہید ہو گئے ہیں ان کو مردہ تصور مت کرو، وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے پاس رزق پا رہے ہیں. اور آل محمد کی محبت میں مرنے والے کو شہید کہا ہے. جس دل میں آل محمد کا نور آ جائے وہ کبھی مر نہیں سکتا، بلکہ شہید ہو کے ہمیشہ زندہ ہو جاتا ہے. اس بنا پر آل محمد اور قرآن ہمیں حیات کی طرف دعوت دے رہے ہیں. اور ابھی علم ہوا ہے کہ اس تمام سلسلے کی آج ہماری حصے کی آخری مجلس ہے. شاید کل سے کوئی اور خطیب و ذاکر جو ہے وہ آپ سے خطاب کریں گے. اس بنا پر ذہن میں تھا یہ کہ دو تین مجالس ہے تو موضوع کو اسی حساب سے پھیلایا تھا، لیکن اب چونکہ اب دامن گنجائش نہیں ہے اور آج آخری گفتگو ہے تو موضوع کو پھر اسی حساب سے سمیٹ رہا ہوں. درود بھیجیے محمد و آل محمد. نوجوان نسل کی رہنمائی حقیقی زندگی کی جانب. حقیقی حیات وہیں سے ملے گی کہ جو در آل محمد ہے، فرش ازا ہے، کیونکہ یہ فرش ہمیں عرش نشینوں سے ملا دیتا ہے. اس بنا پر یہ حقیقی حیات، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور اس زندگی کی حقیقی علامتوں کو تلاش کرنا چاہیے کہ جو آل محمد نے ہمیں عطا کی ہیں. اور ان علامتوں میں سے ایک علامت کیا ہے؟ وہ ہے خدا کی محبت. اگر خدا سے محبت، خدا سے عشق ہماری زندگی میں نہیں ہے، کہ یوں کہوں خدا ہماری زندگی میں نہ ہو، تو پھر اس زندگی کوئی فائدہ نہیں. دیکھیے امام حسین علیہ السلام ہمیں اس حقیقی زندگی کی جانب متوجہ کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہاری زندگی میں خدا نہیں ہے، عبادت نہیں ہے، معرفت نہیں ہے، تو تمہاری زندگی درحق زندگی نہیں بلکہ مردوں کی زندگی ہے. تم بظاہر زندہ ہو لیکن حقیقت میں تم مردہ ہو. کیوں؟ کیونکہ تمہارے پاس وہ چیز ہی نہیں ہے جو زندگی دینے والی. اس کائنات میں زندگی کس نے دی؟ اللہ نے دی. وہ حی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، حی بھی ہے قیوم بھی ہے، ساری حیات اسی سے ہے. توجہ رکھیے گا، محمد آل محمد کی حیات بھی اسی سے ہے، محمد آل محمد کا نور بھی اسی سے ہے، ساری حیات سارا سلسلہ اللہ سے ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول ہے وہی آخر. بس امام حسین کہہ رہے ہیں کہ جس کے پاس اگر خدا نہیں ہے وہ مردہ ہے. اب کیسے بیان کیا ہم نے؟ دیکھیں بہت ہی سادے انداز سے. 9 ذی الحج کو حضرت مسلم کی شہادت کی تاریخ ہے، اور 9 ذی الحج کو ہی امام حسین کی ایک دعا ہے جو دعا عرفہ کے نام سے پڑھی جاتی ہے. اگر اس سال آپ کو توفیق نہیں ملی، اگلے سال ضرور کسی ایسی محفل میں جائیں جہاں پر امام حسین علیہ السلام کی دعا پڑھی جائے. وہ کیا دعا عرفہ؟ بس سب سے بڑا اجتماع کراچی کا کہاں؟ انچولی سوسائٹی میں ہوتا ہے، امام حسین کی شبیہ حرم کے سہن میں. اس میں امام حسین ایک جملہ کہتے ہیں، امام حسین کہتے ہیں کہ اے خدا، جس نے تجھے پا لیا اور ساری دنیا بھی اس کے ہاتھ سے نکل جائے، اسے کوئی نقصان نہیں. جو ساری دنیا کو کھو دے اور اسے تو مل جائے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا. اور جو تجھے کھو دے، جو تجھے نہ پائے، وہ ساری دنیا کو بھی پالے اسے کچھ نہیں ملا. خدا کو چھوڑ کر انسان ساری دنیا کو بھی پالے، علی کو چھوڑ کر انسان ساری دنیا کو بھی پالے، حسین کو چھوڑ کر ساری دنیا کو پالے، اسے کچھ نہیں ملا. لیکن اگر جسے اللہ مل گیا، اللہ مل گیا یعنی حسین مل گیا، علی مل گیا، محمد آل محمد کی محبت مل گئی، اسے سب کچھ مل گیا. دور بھیجے محمد آل محمد. بس حقیقی زندگی وہ ہے کہ جس میں ہماری زندگی میں خدا نظر آئے. کہیں تو کوئی عبادت، کوئی ادب، کوئی ایسی چیز جسے ہم کہیں کہ اے خدا یہ زندگی تیرے لیے. اب مثلا نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ، نماز کے بعد کہ جلدی تسبیح ڈلاؤ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسے ہی ہوتا ہے نا، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پڑھ کے آ رہے ہیں. ماشاء اللہ ریس لگی ہوئی ہوتی ہے، جلدی پڑھنا ہے، اللہ الحمد للہ، کچھ پتہ ہی نہیں تھا کیا پڑھ رہا ہے. یا وہ جیسے ریس لگی ہوئی ہوتی ہے شب قدر میں، ہاں بھی تیری کتنی ہو گئی، ہاں میری اسفلا سفلا 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 سفلا، یار اس کی ختم ہو گئی. اچھا اس کے بعد میری اسپیڈ سے بڑھ جاتی ہے، یہ ہو رہا ہوتا ہے شب قدر میں. اس لیے شب قدر میں دوستوں کے ساتھ جانے میں بڑا نقصان ہوتا ہے، وہ ریس لگی ہوئی ہوتی ہے، یار اس کی اور تمہاری کتنی رکعت ہو گئی، وہ میری پسند 7 دن کی، 6 دن کی، 5 دن کی، وہ ان کی اسپیڈ تیز ہو جاتی ہے، ٹربو لگ جاتا ہے. درود بھیجے محمد وال محمد. حقیقت زندہ اب ہم کر رہے ہیں، اب خدا کہہ رہا ہے. دیکھیں خدا کہہ رہا ہے مانگو، آؤ میرے پاس، مانگو مجھ سے، دروازہ کھٹکھٹا. ایک عالم تھے، وہ وضو کر رہے تھے، اور ایسا ایسا وضو کرتے تھے. ایک نوجوان آیا اور جلدی نے نماز پڑھی، ابھی ان کا وضو ختم نہیں ہوا، اس کی دونوں نمازیں ختم ہو گئی. جانے لگا، ادھر آؤ. اچھا سمجھ گیا، آج کلاس ہو رہی گی. کیا کر رہے تھے؟ نہیں کچھ نہیں، ادب تھا نا اس کے دل میں. بتاؤ کیا کر رہے تھے، کیا کرنے تھے؟ نہیں آغا صاحب ایسے ہی کہا آیا تھا. کہا کہ میرے دیکھے تم کچھ کر رہے تھے؟ کہا کہ بس خدا کو یہ کہنے آئے تھے، خدا میں بھاگ ہی نہیں، میں بھاگنے فرار کرنے والا نہیں، بس پریزنٹ لگانے آیا تھا آپ نے. چلے گا وہ شخص. کہتے ہیں مشتحد کبھی کبھی جب وجد میں آتے تھے اور گریہ تاری ہوتا تھا، تو اسی نوجوان کے جملہ کہتے تھے، کہتے تھے خدایا میں باغی نہیں ہوں، میں آیا ہوں تیرے دروازے پر. खुदा देख ले मैं आया हूँ दरवाजे पे, किसी तरह अपने आप को पहुँचाएँ दरे अहले बैत पे, पहुँचाएँ दरे खुदा पे, पहुँचाएँ खुदा देख ले मैं आया हूँ। अब क्या होता है जल्दी जल्दी हम अल्लाह सोना सोना पड़े होते हैं, खुदा कह रहे मांगो मुझसे, आओ मेरे पास, मैं तुम्हें हयात दूंगा, मैं हई हूँ तुम्हें जिंदा कर दूँगा, मैं अबद हूँ मैं अबदी कर दूँगा, जो मांगोगे वो तुम्हें दूंगा। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के जब बंदा सजदे शुक्र में सब रखता है, मुस्तहिब सजदा ना करेंगे तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन मुस्तहिब सजदों में सुन्नत सजदों में सबसे ज़्यादा जिसकी ताकीद है वो सजदे शुक्र है नमाज के आखिर में, 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगते उसमें। जब बंदा अपनी पेशानी सजदे में रखता है और 3 दफ़ा कहता है शुक्रान लिल्लाह शुक्रान लिल्लाह शुक्रान लिल्लाह, कितने 3 सेकंड हो गए ना इन्हें खुद तेरा शुक्र, तो खुदा इतना खुश होता है, खुदा कहता है कि सल अब्दी हाजत है, ए बंदे तू अपनी हाजत मांग मैं तेरी झोली भर दूंगा। सजदे शुक्र इतना अजीम सजदा है जिसको हम अहमियत नहीं देते, बस अवत तस्वीर भी नहीं पढ़ते, ये जैसे रॉकेट बटन दबाने फायर होता है ना निकलता है, ऐसे नमाज तमाम अल्लाह अकबर अल्लाह इन अल्लाह मलाइका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी नौजवान वो बाहर खड़ा हो और तस्वीर पढ़ने में इमाम फरमा रहे हैं ये तस्वीर फातिमा ज़हरा ये ज़िंदगी है, हकीकत ज़िंदगी क्या है यहाँ से पता चलेगी। तस्वीर फातिमा ज़हरा 1000 रकत से अफजल है, 1000 रकत आप मतलब 500 नमाजें सुबह की पढ़ें मुस्तहब और 1 तस्वीर पढ़ें। आयतुल खामने के बारे में तस्वीर पढ़ने में कम से कम 10 मिनट लगाते हैं, 10 मिनट 1 तस्वीर पढ़ने में, जिसे हम जी 1 मिनट के अंदर ख़त्म कर लेते हैं कि अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, खुदा बुजुर्ग अल्हम्दुलिल्लाह खुदा के लिए हम तो सना तारीफ उसी के लिए, सुबहान अल्लाह खुदा पाक है। वो एक साहब जो है मजलिस में बहुत आते थे तो आपको पता है बाबा की आदत होती है, वो एक दफ़ा तस्बीह पढ़ते अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वाह 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 दुरूद ए मोहम्मद व आले मोहम्मद। हकीकी ज़िंदगी खुदा के पास है, हकीकी ज़िंदगी मोहम्मद आले मोहम्मद के पास, और हमें ले जाना है नौजवानों को। तो गुफ्तगू ये हो रही थी कि नौजवान नस्ल की रहनुमाई करें, लेकिन मैं ये 4-5 दिन से जितने दिन भी आया मैं ये नोट कर रहा था कि ऐसे आप में से औलाद वाले यानी गिने चुने अफराद होंगे, बाकी सब तकरीबन नौजवान ही जिनकी जी शादियाँ नहीं हुई, लेकिन सब बड़े गौर से सुन रहे थे ये मैं देख रहा था। और मसलन कुछ बच्चे हैं जो रोज़ाना आ रहे हैं, कुछ ऐसे नौजवान हैं जो रोज़ाना आ रहे हैं और बहुत गौर से सुन रहे हैं, यानी ये मेरे लिए जाए ताज्जुब था कि मसलन बोरियत के शिकार होते ही मौलाना क्या बच्चों के मसाइल लेके बैठ जाते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि चूँकि नीड है ना हमारी ज़रूरत है ज़्यादा, हर इंसान बहुत गौर से तवज्जो से सुन रहा है। अब मसलन ये हमारे भाई आगे बैठे हैं, इन्होंने जाके इनके साथ जो बच्चा आता था उसने 1-2 दफ़ा सुना, वो थोड़ा सा शरीफ हो गया, बच्चे सुन रहे हैं, अब बच्चे सुन रहे हैं तो इसका मतलब अमल देख भी रहे हैं, जब कान में 2-4 बातें तो जा रही ना, ये बच्चे जो यहाँ बैठे हैं क्या है कि कान में बात जा रही है, ये ऐसा नहीं है, लिहाजा इन बच्चों के लिए हमें तरबियत करनी है। तो 4 बुनियादी उसूल मैंने आपके सामने पेश किए थे, 4 बेसिक नीड्स हैं बच्चे की, बुनियादी ज़रूरत है, पहली चीज़ मोहब्बत जो गुफ्तगू हो गई है, दूसरी चीज़ एहसास अमन, तीसरी चीज़ एहतराम और चौथी चीज़ एक्सरसाइज और खेल, ये 3 और बुनियादी ज़रूरतें हैं, यानी अगर ये बच्चे को ये चीज़ ना मिले ना बच्चा मर जाएगा, बच्चे को अगर ये चीज़ मैसर ना आए ना बच्चा तरबियत नहीं पा सके, जिसम तरबियत पाएगा लेकिन रूह जो है उसकी छोटी रह जाएगी। आपने देखा होगा बहुत से बच्चे होते हैं माजरत के साथ एबनॉर्मल होते हैं, जिसम सही होता है लेकिन अकल जो है वो 2 साल 3 साल के बच्चे की होती है, अकल ग्रोथ नहीं कर रही होती। हमारी पूरी तवज्जो होती है जिसे बढ़ जाए, कद नहीं बढ़ रहा डॉक्टर के पास लेके जाओ, कद क्यों नहीं बढ़ रहा, होता ही नहीं होता, वालदेन परेशान होते हैं, कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। उससे ज़्यादा हमारी सेंसिटिविटी कहाँ नज़र आने चाहिए, और रूह की तरबियत के लिए। जिस्म तो 60 साल 70 साल तक चलेगा, ख़त्म हो जाएगा, रूह ने जाना है, इस रूह को ज़िंदा करना है, इस रूह में खुदा डालना है, इस रूह में मोहम्मद आल मोहम्मद की खुशबू डालनी है, और उसके लिए कोई काम ही नहीं हो रहा है। सारी चीज़ें जो इस बदन के लिए हैं, बेड आएगा बदन के लिए, पंखा आएगा बदन के लिए, एसी आएगा बदन के लिए, गर्म गैस आएगा बदन के लिए, खाना आएगा बदन के लिए, सैर सपाटा है बदन के लिए, घूमना फिरना है बदन के लिए, रूह के लिए क्या है? कुछ नहीं। रूह को जो मसलन जो चीज़ मिल गई नहीं मिली कोई मसला ही नहीं। रूह के साथ रूह को ज़िंदा करना है, जो रूह हमेशा रहेगी। तो दूसरी चीज़ जो बच्चे की बुनियादी ज़रूरत है वह एहसास अमन है। बच्चा फैमिली में आके एहसास अमन करे, सिक्योर महसूस करे, महफूज महसूस करे, प्रोटेक्शन हो उसको, हिफाजत हो उसकी, वो कहे कि माँ बाप मेरे मुहाफिज हैं, मेरे गार्ड हैं, मेरी हिफाजत करने वाले हैं, मेरा ख्याल रखने वाले हैं। ऐसा नहीं कि बच्चा अनसिक्योर महसूस करे, गैर महफूज महसूस करे अपने आप को। अगर जनाब ज़ाहरा का घर बच्चों के लिए गैर महफूज होता, इमाम हसन कभी आके सलाम नहीं करते, या सलाम करते तो दूर से सलाम करते। नहीं, सिक्योर है घर बच्चे के लिए। बच्चा सिर्फ दरवाजे से सलाम नहीं कर रहा, कद अकबला मतलब वहाँ से चल के माँ के पास पहुँचा है, फिर कह रहा है कि अस्सलामु अलैकुम अम्मा। खूब, इसका मतलब यह है कि बच्चे को मोहब्बत मिलेगी, बेसिक चीज़ मोहब्बत है। मोहब्बत मिलेगी, बच्चा आपसे फ्री होगा, बच्चा आपसे ईजी होगा, बच्चा आपसे घुल मिल जाएगा। लेकिन अगर मोहब्बत ही नहीं है तो बच्चा अमनियत का एहसास नहीं करेगा। अमन को इंग्लिश में क्या कहेंगे? पीस मसलन उसका माहौल नहीं मिलेगा। नहीं, एक और कोई वर्ड है उसे मेरे जहन से निकल रहा है। बहरहाल अनसिक्योर है, अनसिक्योर है तो गैर महफूज है। मसलन आप अगर रोड पे जा रहे हैं और आपको हर लम्हे धड़का है कोई मोबाइल ना छीन ले जी, एटीएम कार्ड मशीन एटीएम के लिए जा रहे होते ना तो 4 दफ़ा देख रहे होते पीछे कोई आ नहीं जाए खुदा ना खास्ता, अनसिक्योर महसूस कर रहे होते हैं, अंदर से लॉक कर लेंगे। और व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाएगा, अगर कोई आ जाए इस दौरान तो अपना कोड जो है उल्टा टाइप कर दें। कितनी सारी चीज़ें आ रही हैं आपको महफूज बनाने के लिए, पैसा महफूज, कार्ड महफूज, ये सारी चीज़ें इसीलिए हैं ना। लेकिन जो हमारी जान है, जो हमारा मुस्तकबिल है, जो हमारा फ्यूचर है इस दीन का, इस मज़हब का, इमाम बरगाह का, मस्जिद का, उसके लिए हमारे यहाँ कोई इंतज़ाम नहीं। क्या जितने हम जब अनसिक्योर महसूस करते हैं तो हम क्या आसानी से चल सकते हैं रोड पर, खा सकते हैं? मसलन आप खा रहे हैं कोई खाना और मुसलसल कोई शख्स आपको देखा जाए तो आपको उलझन होने लगी, ये मुझे क्यों देख रहा है, बिला वजह क्यों देख रहा है? अनसिक्योर महसूस करता है इंसान, आखिर वजह क्या है, सबब क्या है? मसलन आप रोड पर जा रहे हैं, ये शख्स घूरे जा रहा है, आपको देखे जा रहा है, आप अनसिक्योर महसूस करेंगे, आखिर क्या वजह है भाई, कौन है, किस लिए हो, क्यों देख रहे हो, क्यों घूर रहे हो, क्या सबब है, पूछेंगे नहीं पूछेंगे? बच्चे के लिए माहौल जो है वो सिक्योर होना चाहिए। अगर बच्चा महफूज नहीं है इसका मतलब वो खौफ की फिजा में है, डरा हुआ है, मुतमईन नहीं है। इसीलिए कहा गया कि बच्चा कोई चीज़ कर रहा है ना उसको आगे झाड़े मत, डांटे मत फौरन से। क्या होता है, मसलन बच्चे मिट्टी से खेल रहा है, मसलन अर्ज कर रहा हूँ, ये कोई और काम कर रहा है, वो अपने छोटे जहन के साथ खेल रहा है, दीवार बना रहा है, छत बना रहा है, गाड़ी से खेल रहा है, जो भी है, अब वो उसी में लगा हुआ। आप जैसे ही आए ना आपने उसके ख्वाब चकनाचूर कर दिए। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप बहुत कीमती घर बनाएं और अचानक से कोई आगे बिल्डोज कर दे तो ना दीवारें, ना घर, ना छत, ऊपर खुला आसमान, बिल्कुल यही सूरत बच्चे की होती है। बच्चों को जैसे ही आपने आगे डिस्टर्ब किया ना, बच्चा अनसिक्योर महसूस हो जाएगा, अपने आप को अनसिक्योर महसूस करेगा, वो लखों तक सहरा में होगा, क्या करेगा वो। اور پھر یہیں سے بچے کی شخصیت میں کیا خلل آنے لگتا ہے، ایب نارملٹی بڑھ جاتی بچے کی. اسے پتا ہے میں جب بھی جنگ کوئی کام کروں گا باپ کی نگاہیں گھول لیں گی، ماں کی نگاہیں گھول لے گی، کوئی جوتا آ جائے گا، کوئی مکہ آ جائے گا، کوئی گھونسا آ جائے گا، کوئی کڑوا کسیلا کوئی جملہ آ جائے گا. وہ بچہ ان سے کیوں محسوس کر، وہ کبھی اس کی اسکلز پروان نہیں چڑھے گی، کبھی وہ پالش نہیں ہو سکے گا، کبھی وہ گروتھ نہیں کر پائے گا، کبھی وہ گروتھ نہیں کر پائے گا. اس کی ایک آسان سے مثال دوں کیسے گروتھ کرے گا. ایک لمبا سا غبارہ لیں آپ، جب آگے سے موڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے نا، تو اس کی شکل عجیب ہو جاتی ہے، پیچھے سے موڑ دیں شکل عجیب ہو جاتی ہے. کارٹون کی شکل کیا ہوتی ہے، ایسی ہوتی ہے کہ ناک لمبی ہوگی یا کان لمبے ہوں گے، صحیح، یا مثلاً ہاتھ پیر لمبے ہوں گے. اسی طریقے سے کیا ہے کہ بچے کی شخصیت ویسے ہی ترتیب پا رہی ہوتی ہے. وہ اس طرح ترتیب پا رہی ہوتی ہے کہ آپ اس کو کیا کر رہے ہیں، دربھیج محمد والے محمد کا، ایک اور دربھیج محمد والے محمد، یہ سارے نمونے میری مجلس میں ملیں گے آپ کو، کہیں اور نہیں ملیں گے، قدر کیجیے. دربھیج محمد والے محمد کا موسم کو پتہ ہی نہیں کہ ہو کیا گیا، وہ اپنی دنیا میں مگن ہے. درو بھیجے محمد والے محمد، کوئی حرج نہیں. یہ بچہ اگر یہ خیال رکھے پروان چڑھے کہ میری وجہ سے مثلا مجلس تھوڑی دیر رکی تھی اور مولانا نے مجھے ڈانٹا نہیں، اگر یہ خیال اس کے ذہن میں رہ جائے، یہ بہت بڑا تحفہ ہوگا آپ کی اور میری طرف سے بچے کے لیے. ورنہ ہوتا کیا، ڈانٹ دیا جاتا، ڈبٹ دیا جاتا، چپ کھاؤں بچوں میں دبک کے پھس ہوا نکل گئی اس کی بیچارے کی. نہیں، بچوں کو آنے دیں، یہاں شور مچائیں زیادہ بہتر ہے بہ نسبت باہر جا کے اہلے غیرے کے ساتھ. تو بچے کی شخصیت کیا ہے، انسیکیور ہو جاتی ہے، وہ غیر میں اس کی صلاحیتیں پروان نہیں چڑھتی ہیں. اب ہم والدین خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کا گلا گھونٹ رہے ہوتے ہیں روزانہ. کسی ماں باپ کو دیکھا اپنے بچے کا گلا گھونٹ رہا ہو، آپ کہیں پاگل ہو گئے، گلا گھونٹ رہے ہو، کیا ہو گیا تمہیں، مر جائے گا؟ نہیں 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 مرے گا، میرا بچہ مجھے پتا ہے ربڑ کا ہے جی دبا جا. ماں باپ بعض اوقات بچے کا گلا گھونٹ رہے ہوتے ہیں جملے کس کس کے، کھانے کے لیے پیدا ہو گئے ہو، بچے کے کھانے پہ اعتراض، بچے کے کھیلنے پہ اعتراض، بچے کے مثلا فلاں چیز پہ اعتراض. اچھا پھر مذاق بنا لیتے ہیں، پھر مذاق پہ ہنستے ہیں ماں باپ، چاچا ماموں یہ سب کیا یہ ہنس رہے ہوتے ہیں، یہ بچے کا گلا گھونٹ رہے ہیں، ہم بچے کی ٹانگیں توڑ رہے ہیں، اسے اپاہج اور لنگڑا لولا بنا رہے ہیں، ہم نہیں سمجھ رہے ہوتے. مثلا بچہ بیٹھا ہوا ہے نا، اب بچے نے کچھ کہا اس کا تھپڑ مار دو، اس کو یہ کر دو بیٹا، یہ اس کو زبان چڑھا دو. اب بچہ کیا ہے، بچہ سادہ سا ہے، وہ بچے کو بس کرے گا، وہ بڑا ہو کے پھر یہ ماں باپ کو ہی تھپڑ مارے گا، یہ زبان چڑھائے گا، یہ بدتمیزی کرے گا. وہ آپ نے بچے کو سکھایا ہے. یا ایک اور انداز ہوتا ہے ہمارے یہاں ڈرانے کا، اللہ بابا آ جائے گا، بہو آ جائے گا، بھوت آ جائے گا، یہ انتہائی نقصان دہ، احادیث مذمت کی گئی ہے. اور ہم بہت آسانی، یہ میں کہہ رہا ہوں یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم بچے کا گلا گھونٹ رہے ہیں. بچہ مر رہا ہے زندہ ہو رہا ہے، بچہ زندہ ہو رہا ہے مر رہا ہے. بچہ محفوظ رہے گھر میں، یہ اس صورت ممکن ہے جب آپ اس کو انسان کا بچہ سمجھیں گے، انسان سمجھیں گے. تیسرا نقطہ وہ ہے احترام، رسپیکٹ. یعنی اسلام یہ کہتا ہے بچے کی رسپیکٹ کرو، وہ بچہ نہیں ہے، شخصیت ہے، اس کا وزن ہے، تمہیں لگ رہا ہے بچہ ہے. اسلام کہتا ہے بچے کی شخصیت کا احترام کرو، تمہارا اپنا بچہ صحیح، لیکن کبھی اسے اس کی انسلٹ نہ کرو، اس کی بے عزتی نہ کرو، اسے ڈیگریڈ نہ کرو، اس کو کسی کے سامنے ڈانٹو نہیں، اس کو مارو نہیں. حتیٰ کہ ہے کہ اگر ماں باپ ماریں اور بچے مثلاً جلد उसकी लाग हो जाए, ये ऐसे काम जिसे दियत वाजिब होती है वो फिर माँ बाप को अदा करनी होगी। बच्चा आपका सही, लेकिन अल्लाह की अमानत है। ऐसा नहीं कि आप जैसे चाहें मिसाल के तौर पर वैसे रफ्तार करें उसके साथ, नहीं। बच्चे का एहतराम ज़रूरी है, और यही वजह जनाब ज़ाहरा के कहने बच्चों का एहतराम है। ये जो मैं बार बार हदीस किस्सा का हवाला दे रहा हूँ, इमाम हसन सलाम के वालेकुम सलाम, जवाब वाजिब अदा हो गया काफ़ी था, लेकिन कहा नहीं एहतराम ज़रूरी है। क्या वालेकुम सलाम या क़ुर्रत आइनी व सबर दरवाजा, मेरी आंखों की ठंडक, मेरे दिल का चैन हसन सलाम हसन सलाम। और फिर सिर्फ यही नहीं, रसूल अल्लाह एहतराम कर रहे हैं। इमाम हसन आए एक अलग तरीके से हसन का जवाब दिया, इमाम हुसैन आए अलग तरीके, या साहिब अल वाई मसलन, या शाफी उम्मती, अलग तरीके से जवाब दिया, एहतराम किया। बच्चा आ रहा है वैसे इमाम हुसैन आ रहे हैं, क्या आगे बढ़ के ले आए, ये एहतराम सिखा रहे हैं हमें। बाज़ूकात होता है कि बच्चों को ज़रूरत होती किसी महफिल में हमारी सपोर्ट की, ज़रूरत होती हमारी मदद की, हम देख रहे होते हैं और हम ऐसे बन जाते हैं जैसे देखा ही नहीं। बच्चे की बेइज्जती की जा रही होती है कहीं और हम बैठे हंस रहे होते हैं, हम उसको मसलन निशाना बना रहे होते हैं। ये क्या है, ये बच्चे के एहतराम को मुनाफी होगा। जिस घर में बच्चे का एहतराम नहीं होगा वो घर तारीख हो जाएगा। अब इसमें अहदीस तो अहदीस में पेश नहीं करूँ क्योंकि वक्त काफ़ी गुजर चुका, और आखिरी आज जो है गुफ्तगू में सिर्फ हेडलाइन के तौर पे आपको दे रहा हूँ। और आखिरी नुक्ता क्या है, वह है खेल। बच्चे के लिए खेल ऐसे ही है जैसे सांस लेना ऑक्सीजन। अगर आपने खेलने नहीं दिया बच्चा को, बच्चे की जहनी सलाहियतें परवान ही नहीं चढ़ेगी। जानवर का बच्चा होता है ना, कबूतर का बच्चा, परिंदे का बच्चा, ये क्या कुछ दिनों तक साथ होते हैं वालदैन के, केयर करेंगे, हिफाजत करेंगे, बचाएंगे ताकि अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। जैसे ही बच्चा इस काबिल होता है कि खुद चल सके, मुर्गी पर मार के बच्चों को आगे कर देती है, चुड़िया घोंसले से धक्का दे देती है, उड़ो। खुद जानवर जो है अपने बच्चों को मुँह से उठा के चलना सिखा देता है, शायद एक दिन के बाद ही चलना शुरू कर देता है बच्चा। इंसान का बच्चा स्पेशल है, खुदा ने रखा है इंसान को, क्योंकि लकत करम न बनी आदम, हमने बनी आदम को मुकर्रम साहिब इज्जत व तकरीम बनाया है, लिहाजा उससे मत छीनो। खुदा ने ये नहीं कहा कि तुम पीएचडी करोगे तो साहिब तकरीम हो जाओगे, तुम मौलाना अल्लामा बन जाओगे तो साहिब तकरीम हो जाओगे, तुम मसलन गोल्ड मेडल ले लोगे साहिब तकरीम हो जाओगे। लकत करम न बनी आदम, हमने बनी आदम मुकर्रम बनाया है, बनी आदम से मुराद बच्चा भी है। अरे ये तसव्वुर मत कीजिए कि इज्जत सिर्फ हमारे और आपके लिए बच्चे के लिए नहीं है, खुदा कह रहा है हर इंसान के लिए है इज्जत, हर इंसान के लिए इज्जत है। चुनाचा अगर बच्चे के साथ बच्चे को ये मौका न दिया जाए कि वो खेले, दौड़े, कूदे, इसलिए कहा गया है बच्चा जितना दौड़ता कूदता भागता है जिसम की एनर्जी यूटिलाइज होती है और उसकी बॉडी एनर्जी मांगती है, गज़ा मांगती है, वो जब उसे प्रोवाइड की जाती है तो वो उसकी नशोनमा सही होती है। लेकिन अगर बच्चे को खेलने ना दिया जाए, बैठ जाओ चुप खामोश, तबाही कर दी, बर्बाद की, नाक में दम कर दिया, नचाते रहते हर वो, सर में दर्द हो गया तुम्हारे, क्या होगा? आपने तो कह दिया बच्चा खामोश हो गया, ये इसका चिराग दिमाग गुल हो गया। अब आप देखिए हदीस जो सुना रहा हूँ, और हदीस ये है अरामतुस्सबी तो सहब आरामा कहते हैं खेलना, बच्चे का खेलना, बच्चा है दौड़ेगा भागेगा उछलेगा कूदेगा शोर मचाएगा, बच्चे की आदत। अब बच्चा अगर चुप बैठा है तो वो एबनॉर्मल है, बच्चा और बंदर अगर चुप बैठे हैं तो नॉर्मल नहीं है। बच्चे का काम ये शोर करना, बच्चे का काम ये उछलना कूदना, ये खुदा ने रखा कि उछले कूदे दौड़े भागे चीखे चलाए ताकि इसका जिस्म इसकी रूह इसकी स्किल्स ग्रोथ करें, और हम क्या कर देते हैं कि फौरन पाबंदी लगा देते हैं, चुप खामोश बैठ जाओ, नाक में दम कर दिया, सर में दर्द कर दिया, जीना आराम कर दिया, पता नहीं किस पे गए हो तुम, हम तो ऐसे नहीं थे तो फला। अब क्या बच्चों को बार 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 ये सब चीज़ें कर रहा है। मासूम फरमा रहे हैं बच्चों को खेलने दो, ले यकूना हलीमन फी के वर्षे में, ताकि जब बड़ा हो तो बोर्दबार हो, मेच्योर हो, पुख्ता हो, पका हुआ इंसान हो। आपने देखा होगा बहुत से लोग बड़े होके बड़ी ओंगी बोंगी हरकतें कर रहे होते हैं, बेतुकी हरकतें कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके बचपने के जो जिन है ना वो बचपने में नहीं निकला। जिस बच्चे के बचपने का जिन बचपने में नहीं निकला ना, तो बड़ा होके एबनॉर्मल इंसान होगा। उसकी एक निशानी मैं बता देता हूँ माजर के साथ, नाखून खाना। माशाल्लाह से बहुत वाफिर मकदार में लोग खाते नाखून। अब अगर मेंबर नहीं होता और मजलिस नहीं होती तो मैं आपको करके बताता हूँ, मैं टीचर आदमी हूँ, काउंसलिंग करता हूँ, तो मैं मसलन गाइड भी उसी तरह करता हूँ कि लोग नाखून कैसे खाते हैं और क्यों खाते हैं और उनकी शक्लें क्या क्या होती हैं, नाखून खाने के साथ साथ उनकी शक्लें कैसे बिगड़ती हैं, ये क्यों होता है। ये इसलिए होता है उनकी शख्सियत में खलल रह गया, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि उनके उनका जिन जो है ना, हर आदमी के साथ एक जिन होता है, उर्फन कह रहा हूँ जिन, ना कि हकीकी जिन, वो बचपन में नहीं निकला। ये जिन कब निकलता है इंसान से, जब खेलेगा कूदेगा, ये बचपन में होता, उसके बाद ये जिन निकल जाता है, बच्चा नॉर्मल हो जाता है। लेकिन जिसने खेला कूदा नहीं उसका जिन निकलेगा नहीं, और जब वो बड़ा हो जाएगा तो फिर वो वाकई जिन बन जाएगा दूसरों के लिए, बीवी के लिए जिन बनेगा जी, बीवी भी चीज़ें चिल्लाएगा, बर्तन तोड़ेगा, या बच्चों के लिए जिन भूत बन जाएगा, उन पर हाथ पैर का इस्तेमाल करेगा, या बिलाखिर अतराब में जो भी उस जिन के सामने, भूत के सामने आ जाएगा, उसका जीना आराम कर देगा। उसकी वाहिद वजह क्या है, इसका जिन बचपन में नहीं निकला। इमाम कह रहे हैं ताकि वो मैच्योर इंसान बने, बच्चे को खेलने दो, 7 साल तक खेलने दो उसको, और हम इब्तदाई 7 सालों में इतने फुल स्टॉप लगा रहे होते हैं कि उसका जीना आराम कर देते हैं। एक गली हो जिसमें 50 मीटर की गली हो और उसमें 50 स्पीड ब्रेकर हो, तो आप कितनी सलवाते सुना रहे होते हैं। 4 से 10 स्पीड ब्रेकर आ जाएं तो आप यार अजीब लोग हैं, हर जगह स्पीड ब्रेकर, आपकी आपको मोटरसाइकिल गाड़ी चलाना दोबर हो जाएगा, कितनी सलवाते सुनाएंगे यार। ये कोई गली है जिसमें हर जगह हर एक आधे फुट के बाद जो है वो स्पीड ब्रेकर। हम दरहकीकत ऐसे ही स्प्रेकर बना बनाकर क्या कर रहे होते हैं, अपने बच्चों की ज़िंदगी जुर्म कर रहे होते हैं। इसलिए कहा कि बच्चों को खेलने दो, ये बच्चा खेलेगा नहीं, ये परवान नहीं चढ़ सकता, जवान नहीं हो सकता। और यही वजह है कि अहले बैत ने कसरत के साथ ताकीद की है। इमाम अली घर में आते बच्चों के साथ घुल मिल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं बच्चों के साथ। इमाम है, इमाम इमाम अमीरुल मोमिनीन है, नफ्से रसूल है, यदुल्लाह है, ऐनुल्लाह है, सब कुछ है, लेकिन घर में जब आएगा वो बाप है, दोस्त है बच्चों का। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों के दोस्त बने और बच्चों को दर हकीकत इसी तरीके से गाइड करें। इसीलिए कहा कि बच्चा 7 साल तक तुम्हारा कौन है, सैयद है, सरदार है, बॉस है, उसकी खिदमत कर दो। और हम क्या इन्हीं 7 सालों में इतने फुल स्टॉप लगाते हैं, उसकी शख्सियत, उसकी शक्ल, उसकी हकीकत ही बिगड़ जाती है। लिहाजा कोशिश ये होनी चाहिए। अब जाहिर बात है ये मौजू ऐसा है, इसमें डिटेल है, इसमें काफ़ी तफसीलात हैं, बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं, और जाहिर बात है कि सवाल जवाब का तो बहरहाल मौका नहीं है और ना ही मजलिसों में इस तरीके से होता है, तो होनी चाहिए कि बाद में जो है गुफ्तगू इस तरह रखी जाए जिसमें आप सवाल करें मैं जवाब दूँ, नहीं कि वन मैन शो में आऊँ और बोलूँ और जी माशाल्लाह से बात ख़त्म हो जाए। तो एक मौलाना साहब जी का अशरा पढ़ने गए, देखा एक साहब जी सबसे आगे आगे बैठते हैं और यह ना सर नीचे करके सर ही जाते रहते हैं। मौलाना का इनकी समझ में सब कुछ आ रहा है, ये सबसे आगे आगे बैठते हैं, सबसे पहले बैठते हैं, सबसे आखिर में जाते हैं और सर भी लाते रहते हैं। ये मेरे मुरीद बन गए होंगे अब तो पक्के। जब अशरा ख़त्म हो गया उन्होंने कहा कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? आप सबसे पहले आते थे, सबसे आखिर में जाते, सारे लाते थे। कहा कि मौलाना घर में शोर बहुत होता था, थोड़ा आगे जाए यहाँ के नींद ले लेता था। तो ऐसा नहीं हो कि मैं आगे बोलूँ और कोई नींद लेके कोई जी ऊँग लेके चला जाए। वो गुफ्तगू ऐसी होगी कि आप सवाल करेंगे मैं जवाब दूंगी, यानी आप बोलोगे मैं सो रहा हूँ। हाँ रूह भेजो मोहम्मद मोहम्मद ये एहतराम अहले बैत के मसाइब में भी है, फजाइल में तो है ही है, अहले बैत के मसाइब में भी एहतराम रिस्पेक्ट। बच्चा सिक्योर महसूस करे, ये जनाब ज़ैनब के शब आशूर जहाँ ज़ैनब का सकीना की तलाश में जाना, ये क्या है? इसको ज़रा इस नफ्सियाती हवाले से आप देखें, जनाब ज़ैनब तेरव सकीने को ढूंढ के ले आ रही हैं, सीधे से लगा रही हैं। जनाब ज़ैनब के मसाइल और मसाइब कम थे क्या? लेकिन बच्चों को फरामोश नहीं किया। सबसे पहला काम जो जनाब ज़ैनब ने किया है ख़याम जलने के बाद बीवियों को बिठाने के बाद बच्चों की तलाश की, सबसे पहला काम ये किया। इमाम सज्जाद को जलते हुए खेमों से निकाला, बीवियों को बिठाया, हिम्मत दिलाई, सबसे पहला काम ये बच्चे कहाँ हैं? जो बच्चे पामार हो चुके थे उनके लाशों को जमा किया, जो बच्चे गुम हो गए थे उनको तलाश किया, ये क्या है? चूँकि हम सुनते रहते हैं आदियों में हमें पता नहीं चलता, यानी इन चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाहिए कि किस तरह अहले बैत ने मसाइब में भी याद रखा है। इमाम हुसैन और सकीना के आखिरी कलमात जो अदा हुए हैं, ये इम्पोर्टेंस देना है, अहमियत देना है। इमाम हुसैन घोड़े से उतर आए, ज़मीन पर बैठ गए, लेट गए, सकीना को सीने पर सलाया, ये क्या है? ये अहमियत देना है तो नहीं है तो और क्या है? ये कैद खाने में सफ़र के दौरान तवज्जो रखिएगा, जब यजीद लईन ने के दरबार में किसी ने जनाब सकीने की तरफ इशारा करके कहा कि इसको मुझे मेरी कनीजी में दे दे, जनाब सकीना लिपट गई, पपी अम्मा क्या हमें कनीजी में भी दिया जाएगा? सीने से लगा ली, नहीं बेटा किसी की मजाल नहीं आले मोहम्मद को कनीजी में दे सके। फौरन जवाब दिया, मुदल्लल जवाब दे, ऐसा जवाब दे कि बच्चा अपने आप को सिक्योर महसूस करे, महफूज महसूस करे। ये है जनाब ज़ैनब, ये है अहले बैत, ये है ख़ानदान रिसालत, जो मसाइल में भी तरबियत को नहीं भूलते। हम कहें थोड़ा सा हमें आसानी मिलती है, तरबियत तो पता नहीं कहाँ जाती है, हमें पता ही नहीं होता। अलगरज ये कि जो साहिबान औलाद हैं उनके लिए ये लम्हा फ़िक्रिया है, जो इस मंजिल तक पहुंचने वाले उनके लिए लम्हा फ़िक्रिया है, हत्ता जो लोग शादी करना चाहते हैं उनके भी लम्हा फ़िक्रिया है कि वो एक थिंकिंग के साथ, एक आइडियोलॉजी के साथ अपना घर बसाएं ताकि इमाम के सच्चे सिपाही की तरबियत कर सके। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस चाहता हूँ कि आज जनाब सकीना के हवाले से कुछ गुफ्तगू करूँ। ये वो बच्ची है जिसे बाप के बाद प्यार नहीं मिला, जिसने दर दर की ठोक ठोकाई, वो बच्ची की जिसे हक ये था कि गोद में उठाया जाए, इसके लिए हक ये था कि उसे प्यार किया जाए। प्यार तो खोजा, गोद में उठाना तो खोजा, इस बच्ची को तमाचे लगाए जा रहे हैं, इस बच्ची को कांटों पे नंगे पैर दौड़ाया जा रहा है, इस बच्ची को ताजियाने मारे जा। जनाब सकीना ने कहा था ना बाबा आप जा रहे हैं, बाबा वादा करें मुझसे, वादा करें कि आप मुझसे मिलने आएंगे। उन्होंने कहा हाँ सकीना हम तुम्हारे पास आएंगे। बच्चों की आदत होती है जब नई जगह चले जाते हैं तो पूछते हैं ये कौन सी जगह है, हम कहाँ आ गए, हम अपने घर कब जाएंगे। जनाब सकीना भी सुबह शाम यही पूछती, कभी जनाब सैयद सज्जाद के पास आती और हिलाती कहती भैया इधर जिंदा कब बोलेगा। कभी फूफी अम्मा के पास आती और कहती फूफी अम्मा क्या हम अपने बदन जाएंगे। कभी माँ के पास आती और कहती अम्मा इस अंधेरे जिंदान में मेरा दम घुटा जाता है, अम्मा मुझे यहाँ से निकालो। न जाने अहले बैत कैसे तसल्ली देते थे, मुझे तारीख में नहीं मिला, लेकिन यकीन नहीं करते बेटा सकीना एक दिन आएगा तो आज़ाद हो जाएगी, तेरी ये दर्द ख़त्म हो जाएंगे। बस अज़ादार दिन गुजर रहे थे शाम के जिंदान में, एक दफ़ा रात को बच्ची ने देखा हमारी औतरी हैं जनाब ज़हरा तशरीफ लाई हैं और कहा सकीना तेरा बाबा तुझे बुला रहा है, तेरी मुसीबत और मसाइब के दिन ख़त्म हो गए, अजर हो अल्लाह। औलाद वालों जिनके घर में 3 साल का बच्चा है ना, वो यकीनन महसूस कर सकता है हुसैन की सकीना के मसाइब कि सकीना के दिल में क्या गुजर रही होगी। एक दफ़ा ख्वाब से उठी और एक दफ़ा सकीना ने रोना शुरू किया, मेरा बाबा मेरा मजलूम बाबा मुझे मेरे बाबा तक पहुँचा दो, मेरे बाबा को ला दो। अज़ीज़ाने गिरामी अहले हरम जमा हो गए, नन्नी ज़ाकिरा गोया मजलिस पढ़ रही है, अहले हरम सरो सीना पीट रहे हैं, इतना शोर हुआ यजीद से पहुँचा। यजीद ने कहा सबब क्या है, ताकि हुसैन की शहजादी हुसैन को याद कर रही है। बस अदा दुर्गा सर हुसैन लेके चलो, एक दफ़ा सर हुसैन लेके चले दर जिंदा पे आए, खोला जा रहा है, सकीना ने देखा एक एक खान है जिसपे कपड़ा डला हुआ है। सकीना समझी शायद खाना आया, कहा कि मुझे खाना नहीं चाहिए, मेरी रजा मेरे बाबा का दीदार है। कहा कि तेरे बाबा का सर लेके आए हैं, खुदा किसी यतीम को ये मंजर ना दिखाए जो सकीना ने देखा। अल्लाहु अकबर, एक दफ़ा कपड़ा हटाया, एक दफ़ा सकीना ने देखा बाबा का सर है। अज़ीज़ाने गिरामी देखिए, इससे पहले जब भी सकीना और हुसैन आपस में मिलते थे ना, इमाम हुसैन हाथों को फैला लेते थे, सकीना को गोद में उठाकर प्यार किया करते थे। सकीना के जहन में वही मंजर है, सकीना इस इंतजार में है मेरा बाबा मुझे उठाएगा, मगर सकीना को हुसैन के हाथ नजर नहीं आए। सकीना एक लम्हे के लिए रुक गई, बढ़ते हुए कदम रुक गए, ठहर गई सकीना। अब सकीना ने शायद कहो बाबा तू हमेशा सीने पे सुलाता था, हाथों से उठाता था, बाबा आज तेरे हाथ नहीं तो क्या हुआ, आज सकीना तुझे उठाएगी, सकीना तुझे सीने से लगाएगी। अल्लाह, सकीना ने सर हुसैन को उठाया, सीने से लगाया, दो जानू होके बैठ गई, अपने रुखसार को अब हुसैन के रुखसार पर रख दिया। अब बच्चों की आदत होती है जब कोई जख्म हो जाता है ना तो बार बार बड़ों को दिखाते हैं, देखिए ये कट गया, ये तकलीफ हो गई, इससे खून बह रहा है। सकीना ने कहा बाबा जिन गालों में तुम प्यार किया करता था बाबा उनको दवा अच्छे लगा, बाबा जो दूर पहनाए थे वो छीन लिए गए, मगर सकीना महसूस नहीं करा सकती, बाबा के हाथ नहीं है कि बाबा गालों में हाथ रख दे। पर सकीना ने कहा बाबा मैं तुझे महसूस कराती हूँ अपने जख्म रुखसार। अपने जख्म रुखसार को हुसैन के रुखसार पर रखा, बाबा ये वही गाल है जिन पे तुम प्यार किया करते थे। उसके बाद जब उन्हें सकीना गोद में लेके बैठ गई और छोटी छोटी उंगलियों को सरे हुसैन में फेरना शुरू किया, बच्चों की आदत होती है ना छोटे छोटे हाथों से नवाजिश करते हैं, जरा मैं सकीना ने कहा बाबा वो कौन है कि जिसने इस कम सीने में मुझे यतीम कर दिया, तेरा सीना मुझसे छीन लिया। उसके बाद जनाब सकीना की निगाह पड़ी हुसैन की खून आलूदा दाढ़ी पर, कहा बाबा वो कौन शकी है जिसने आपकी दाढ़ी को आपके खून से रंगीन किया। और उसके बाद सकीना की निगाह खुदा किसी बच्चे को ये मंजर न दिखा, सकीना की निगाहें हुसैन के खटे हुए गले की रगों में पड़ी।
اب یہ سکینہ مجلس پڑھ رہی ہے، اہل حرم پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں دادا. سکینہ نے آخری سوال کیا، بابا وہ کون ہے کہ جس نے تیرے گلے کو کاٹا؟ رخسار کا رخسار رکھ دے، بچی رونے لگی. گویا کچھ دیر نہ گزری تھی کہ بچی کی آواز آئی، اہل حرم سمجھے کہ شہ سکینہ کو نیند آ گئی ہے. ہاں حسین نے جو وعدہ کیا تھا سکینہ تجھے لینے آئیں گے، حسین لینے آ گئے سکینہ کو. سکینہ آ جا میرے ساتھ چل، تیری دادی تیرا انتظار کر رہی ہے. سکینہ نے رخسار کو رخسار پہ رکھا، آواز آنی بند ہو گئی. سید سجاد نے شانہ ہلایا، سکینہ بیٹا بابا کو ودا کرو، پھر بابا سے ملاقات نہیں ہوگی. اب جو شانہ ہلایا سکینہ کا سر ڈھلک گیا، انہا للہ و انہا الیہ راجعون. سکینہ اس دنیا میں نہ رہی، بابا کے پاس چلی گئی. بس ادارو غسالہ کو بلایا گیا، غسالہ کفن دینے لگی. جب ایک دفعہ کفن دیتے دیتے رونے لگی، کہا کہ اس بچی کو کوئی بیماری تھی؟ کہا کہ نہیں، اس بچی کو بیماری نہیں تھی. کہا کہ اس کے جسم پر نیل کے نشان کیسے؟ کہا کہ یہ نیل کے نشان نہیں ہے، یہ تازیانوں کے نشان ہے جو کربلا سے کوفہ کوفہ نشان. یہ اس نیلوں کے نشان. بس اللہ دارو نہ جانے کیسے دفن کیا ہوگا اہل حرم نے. آخری روایت کرو، جب اہل حرم کو رخصت ہونے کا موقع مل گیا، آزادی مل گئی، جناب زینب نے دیکھا ام رباب نظر نہیں آ رہی ہے. کہا کہ بیٹا سید سجاد مادر سکینہ نظر نہیں آ رہی. کہا کہ پپی اماں مجھے معلوم ہے کہاں ہے، آئیے میرے ساتھ قید خانے چلے. قید خانے میں داخل ہوئے، دیکھا کونے زندان میں ایک چھوٹی سی قبر بنی ہوئی ہے. مادر سکینہ قبر پہ ہاتھ رکھے سر جھکائے گریا کر رہی ہے، کہہ رہی سکینہ بیٹا درے زندہ کھل گیا، سکینہ بیٹا ہم جا رہے. سکینہ پوچھا کرتی تھی نا بابا ہم میرا کب آئے گا، بابا تجھے لینے آ گیا. سکینہ پوچھتی تھی پھوپھی اما یہ درے زندہ کب کھلے گا، ہم اپنے گھر کا بچائیں گے. سکینہ اپنی دوستوں کے ساتھ کب کھیلے گی؟ مادر سکینہ کے بیٹا سکینہ در زندہ کھل گیا، آزادی مل گئی، ہم اپنے وطن جا رہے ہیں. بیٹا افسوس تجھے اپنے ساتھ نہ لے جا سکے.
علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیع علم الذین ظلموا یوم قلب یقلبون. بار الہ ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما، ہمارے ناسوں کو ہماری ہدایت بخشش اور ہماری معرفت میں اضافے کا باعث قرار دے. ہم جب تک دنیا میں رہے اہل بیت اور قرآن کی مختلف پہلو کا پائیں آخرت میں ان کی شفا سے محروم نہ فرما. حاضرین مجلس بانیانی مجلس کی دینی دنیاوی جہد حاجت کو قبول فرما. جو اسیر اللہ پتہ ہیں ان کو رہائی کی خوشخبری دے، جو مقروض ان کے قرضوں کو ادا کر دے، جن کی شادی اور مسکن کے اسباب ریم کے اسباب مہیا کر دے. اے خدا جو اپنی منزلوں سے دور ان کی منزلوں تک پہنچا، جو مریض ہے انہیں صحت کا ملا اجاتا فرما. پر لہجوں کی گولیاں خالی ہیں، بہت سے دوستوں نے التماس دعوی کی ہے جن کی گولیاں خالی ہیں. ہر وقت جناب جناب باپ کی بہت کا وقت